आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते
करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चिया को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं साकिबुल इस्लाम और हमारे कहानीकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद कहानियाँ भी हैं। तो तारुफ़ करवाती हूँ आपका पहले एक कहानीकार से, इन्होंने हमें भेजी है जयपुर राजस्थान से कहानी, नाम है इनका चेतन शर्मा। शर्मा जी आदाब। बहुत प्यारी कहानी आपकी है और मैं इसके बारे में कुछ कहने से पहले, अच्छा खैर ये मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही मेहरबान डॉक्टर साहब की कहानी लिखी है, बल्कि इनकी कहानी में सारे किरदार बहुत पॉजिटिव हैं। तो हम शर्मा साहब से भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम कहानी सुनते हैं जो ये सुना रहे हैं चेतन शर्मा साहब।
मैं चेतन शर्मा जयपुर राजस्थान भारत से बात कर रहा हूँ। मेरी कहानी इस तरह से है, ये बात 1970 की है, जब मैं 2 साल का छोटा सा बच्चा था। अचानक मेरे घर वालों को ये महसूस हुआ कि मेरी बिनाई के साथ कोई मसला लाहक है। मशवरा करने पर जयपुर के डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बिनाई के जाने का सबब क्या है उन्हें समझ नहीं आया। उस जमाने में सीतापुर उत्तर प्रदेश में आँखों का एक बहुत मशहूर अस्पताल था। मेरे ताऊजी मुझे उसी अस्पताल में लेकर गए, जहाँ डॉक्टर जगदीश एम पाहवा, जो बदकिस्मती से अब इस दुनिया में नहीं है, खुदा उन्हें जन्नत बख्शे, ने मेरा तिब्बी मुआयना किया। पर बदकिस्मती से बिनाई जाने के सबब का तायुन न हो सका, मजबूरन मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और ताऊजी ने मुझे गांव वापस ले जाने का फैसला कर लिया। कुदरत की करनी कुछ ऐसी हुई कि उस दिन हमें रिजर्वेशन नहीं मिला और मजबूरन हमें वहीं अस्पताल के पास ही एक सराय में ठहरने का फैसला करना पड़ा। इत्तफाकन ठीक उसी दिन डॉक्टर पाहवा से मिलने के लिए स्विट्जरलैंड से एक डॉक्टर साहब का आना हुआ। डॉक्टर पाहवा ने मेरा सारा मसला स्विट्जरलैंड से आए डॉक्टर साहब को सुनाया, इस उम्मीद से कि शायद कुछ समझ में आ सके। स्विस डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि बच्चे को आँख का सरतान है और मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पाहवा ने जिस वार्ड में मैं दाखिल था, उस वार्ड के दूसरे मरीजों से हमारे बारे में पता किया और जब उन्हें उस सराय का पता मिल गया जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, तो एक वार्ड बॉय को भेजकर हमें बुलवाया। अस्पताल पहुँचने पर स्विस डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा तिब्बी मुआयना किया और मुआयने के बाद बताया कि उनका शक सही था और मुझे आँख का सरतान था और मेरी आई बॉल्स तुरंत निकाली जानी जरूरी थी, बस सूरत दीगर सरतान दिमाग तक फैल जाता और मेरी मौत जल्दी ही वाकई हो जाती, लिहाजा मेरा आँख का ऑपरेशन करके मेरी आई बॉल्स निकाल दी गई और मुझे एक नई जिंदगी नसीब हुई। बिनाई से महरूम होने के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई की, हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीख कर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में स्टेनोग्राफर के पद पर मुलाजिमत इख्तियार की। मुलाजिमत के दौरान 3 ऐसे मौके आए जब मुझे अपने साइटेड कॉलीग्स के साथ प्रमोशन के लिए मुकाबला करना पड़ा और खुदा की रहमत देखिए कि तीनों बार ही मुझे सफलता मिली। मेरे परिवार में समय मेरी बीवी 2 बच्चे हैं और मैं सभी की तरह अब कंप्यूटर इंटरनेट ईमेल मोबाइल फेसबुक इस्तेमाल करता हूं और एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर कर रहा हूं। इस समय मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के ओहदे पर फायज हूं। आज मैं एहसानमंद हूं डॉक्टर पाहवा का, उस वार्ड बॉय का और स्विस डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया, और शुक्रगुजार हूँ उस खातून का जिसने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मराहिल में मेरा साथ दिया, अपनी बीवी कमलेश शर्मा, बड़ी बिटिया श्रुति शर्मा और बेटे आदित्य शर्मा का, जिन्होंने जिंदगी के मुश्किल मराहिल पर मेरा साथ दिया। मेरी सभी सामयिन से गुजारिश है कि वे अपने फराइज को अंजाम देते समय डॉक्टर पाहवा उस वार्ड बॉय और स्विस डॉक्टर की तरह ही अपने फराइज अंजाम दें। पता नहीं है हमारी जरा सी कोशिश कब किस आदमी को एक जिंदगी बख्श दें। शुक्रिया।
क्या अच्छी कहानी आपने सुनाई, बहुत शुक्रिया आपका जीतन शर्मा साहब कि आपने इतनी अच्छी कहानी लिखी, इसमें हमें शरीक किया। आपने अपनी इस कहानी में जब पहले मुझे लिखी थी तो इसमें ख्वाहिश आपने ज़ाहिर की थी कि आप डॉक्टर पाहवा से मिलना चाहते हैं, फिर मैंने आपको गूगल पे सर्च वगैरह करके बताया कि बदकिस्मती से डॉक्टर साहब का इंतकाल हो चुका है 2001 में, जो आपने जिक्र भी किया है। तो क्या कहना चाहते थे आप डॉक्टर पाहवा से?
बस वही चीज की उनका एक छोटा सा जो उन्होंने कोशिश की थी या एक अपने, देखिए ना क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम थे और ये शायद उनकी ड्यूटीज में तो नहीं था कि भाई पेशेंट अगर हॉस्पिटल से बाहर है तो उसको बुलवा के और फिर स्विस डॉक्टर को दिखाना, ये उनकी शायद जो सरकारी मुलाजमत है उसका तो शायद ये पार्ट नहीं था। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो छोटा सा कोशिश की उन्होंने, उसका रिजल्ट क्या निकला और आज हम किस अच्छे हाल में, कितना आराम से खुदा के करम से हम हैं, वो उनको मैं बताना चाह रहा था और दिखाना चाह रहा था कि भाई, ताकि उनको भी एक तसल्ली होती कि मेरा इतना इतना मेरा किया हुआ आज छोटा सा प्रयास और आज किस रूप में सबके सामने है।
बहुत बड़ी आपने बात की और ये छोटा सा नहीं थी, मतलब मैं भी ये सोचती हूँ कि देखिए आप तो अस्पताल से चले गए थे, एक 2 साल का बच्चा, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने स्विस डॉक्टर आया, उसे डिस्कस किया इस बात को और उनको पता लगा कि ये कैंसर हो सकता है, तो उन्होंने भगाया पीछे आपके एक वार्ड बॉय को कि किस तरह आपको ढूंढ के लाए। तो कहते हैं ना शर्मा जी के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों में ज़िंदा रहते हैं, तो आपके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है डॉक्टर विजय पाहवा को, जो डॉक्टर साहब के साहबजादे हैं, और यही हमारा तोहफा है हमारी कहानी का आपके लिए डॉक्टर साहब। जी तो डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
हेलो
जी डॉक्टर विजय।
हाँ जी बोल रहा हूँ।
तो आपने कहानी सुनी इनकी?
हाँ जी हाँ मैंने सुनी।
तो आप लोग बात प्लीज कीजिए आपस में, क्योंकि ये बहुत मिलना चाहते थे आपके वाले साहब से। जी
जी हेलो
सर, नमस्कार।
नमस्कार शर्मा जी।
सर मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार का और स्वर्गीय पाहवा साहब को बहुत बहुत आभार, आज उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ और उनकी वजह से जो भी मेरा मकाम है और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखिए मतलब आपके फादर साहब की कोशिश और उनकी मेहनत का नतीजा है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वरना तो शायद बहुत साल पहले ही ये क्या कहते हैं किस्सा खत्म हो गया होता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके वालिद साहब इतने काबिल और डेडिकेटेड आदमी थे जिन्होंने हमें एक जिंदगी बख्शी।
जी हाँ बिल्कुल सही कहा, फादर तो अब नहीं रहे लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही हैड लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क ही हैड डन, और आप 1970 की बात कर रहे हैं शायद।
जी हाँ 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 जी हाँ जी 70
तो मैं भी उस समय छोटा सा ही था और माय फादर उस समय वहाँ पे सीतापुर आई हॉस्पिटल में बड़े सीनियर सर्जन की तरह काम करते थे, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे डिफरेंट स्टेट से, तो बहुत लोगों को उन्होंने काम किया उनके लिए, बहुत लोगों को फायदा हुआ है और बहुत मुझे बहुत ही खुशी है इस समय कि वन ऑफ हिज पेशेंट्स हैज रिकवर्ड एंड रिवॉर्डेड इन हिज लाइफ, और आप उसको अभी भी याद करते हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है हम लोगों के लिए।
अच्छा डॉक्टर विजय मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी इसका मौजूद है, ये इसका पेज, तो उस पे अभी मैंने तस्वीर डाली है जब 8 दिसंबर 1968 को इंदिरा गांधी ने इफ्तिताह किया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं और डॉक्टर पाहवा जो हैं इनके पीछे खड़े हुए हैं, तो हमारे जो सुनने वाली तस्वीर देखना चाहें तो ये हमारे फेसबुक पर मौजूद है, पता है facebook.com/आवाज़ दोस्त मेरी कहानी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमें बताइए थोड़ा सा आप अपने वालिद के बारे में। उनकी हमें अंदाज़ा हुआ उनके जो प्रोफेशनलिज्म का जो था, मगर उनकी काइंडनेस जो थी मरीजों के साथ, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है उसकी मेहरबानी, उसके दिल में दर्द जो मरीज़ के लिए होता है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा उनकी हिस्ट्री अगर देखें अगर आप, तो पूरा ही फुलफिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क ही हैज डन, एंड ही वाज अ प्राइवेट सर्जन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ही वाज नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने डिलीजेंस से, और उनके पेशेंट्स फार एंड फार वाइड सब जगह थे उनके, और बहुत नाम था उनका, और अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अभी भी उनका नाम याद करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि शर्मा साहब जो अब हैं वहाँ पे और अच्छे आप जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट मिस्टर शर्मा एज वेल, एंड आई हैव माय बेस्ट विशेस फॉर हिम एंड हिज फैमिली, एंड इन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज रिमेम्बर्ड माय फादर। He passed away about 11 years back in 2005, as you mentioned. लेकिन उनकी यादें अभी भी ताज़ा हैं, उनके जो काम किया था उन्होंने वो अभी भी बहुत लोग याद करते हैं उनके नाम से, उनके जो उनका जो प्रोफेशनल काम है, लिटरेचर है, जर्नल्स हैं, उनका जो साइंटिफिक वर्क था वो अभी भी याद किया जाता है।
तो डॉक्टर विजय, आप भी आंखों के डॉक्टर हैं और आपके बाकी एक बहन और भाई, वो भी तीनों डॉक्टर हैं, तो मतलब आप लोग भी, मुझे पूरा यकीन है, उतने ही अच्छे, जाहिर है बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो कहाँ गए आपके बाकी बहन भाई? आप तो कलकत्ते में,
समय, और मेरे भाई साहब तो अमेरिका में है, वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, डॉक्टरेट की हुई उन्होंने।
अच्छा, उनका नाम क्या?
कैलिफोर्निया में एक जगह है अरवाइन करके, वहाँ पे है।
अच्छा,
और डॉक्टर अशोक पाव पीएचडी की है, कंप्यूटर में अपना काम करते हैं वहाँ पे
जी।
और हमारी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति है जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो लखनऊ में है।
अच्छा, तो शर्मा जी आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर पावा साहब से, या आप जज्बात से बिल्कुल भूल गए सब बातें?
नहीं, बस मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो समय डॉक्टर पावा सीनियर का था, मैं शायद यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर है, और जो पावा साहब आपका समय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास चेंजेस आए हैं, उससे क्या सोचते हैं कि इसमें जो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन में है वो कितना पिछले 40 साल में फर्क आया है?
बहुत फर्क आया है। मैं आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको रेटिनोब्लास्टोमा होगा। आई एम प्रिज्यूमिंग आपने आपने डिजीज का नाम नहीं लिया, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि आंख निकाली गई थी, परहैप्स यू हैड अ कैंसर ऑफ योर रेटिना व्हिच इज कॉल्ड रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हुआ है इस समय, और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो शायद उसी समय उसको रोक दिया जाता है और बढ़ने नहीं दिया जाता। उस समय 1970 की बात कर रहे हैं आप, तो बहुत थोड़ा सा प्रिमिटिव था उस समय, आज से 40-45 साल की पुरानी बात है, लेकिन इट हैपेंस इन बोथ द आईज, दोनों आंखों में होता है, एक में कम होता है, एक दूसरे में होता है। तो आपकी वो जीवन को खतरा देता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो परहैप्स माय फादर थॉट इन कंसल्टेशन विद अदर डॉक्टर्स टू रिमूव द आई, फर्स्ट डायग्नोज द आई दैट दिस इज रेटिनोब्लास्टोमा एंड टू रिमूव द आई सो दैट योर लाइफ इज प्रिजर्व्ड, टू सेव योर लाइफ।
अच्छा, मैं शर्मा जी, मैं ये चाहूँगी कि हमारे कुछ कॉलर्स हैं, और मैं समझ सकती हूँ उसमें एक तो ख़ास तौर से मोहिबुल्ला हैं दादू से। मोहिबुल्ला साहब भी बिनाई से महरूम हैं और वो ज़रूर इस बारे में कुछ पूछना चाह रहे होंगे। तो मोहिब साहब जी, वालेकुम सलाम भाई
जी, मैं गोट बुरड़ा तलक खैरपुर नाथन जासिंद से हाफिज मोहिब अली खुश वर्द कर रहा हूं।
जी भाई,
सबसे पहले तो मैं शर्मा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि बिनाई जो है हम, मेरे पास नहीं है, यकीन करें उसका एहसास मुझे होगा। इस समाज में जिंदगी गुजार मैं रहा हूँ, किस तरह गुजार रहा हूँ वो मुझे मालूम होगा, बिनाई जिससे जो महरूम लोग होते हैं। میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے والد صاحب اتنے اچھے تھے کہ اس نے اس کو زندگی دے دی, اور بینائی سے بینائی جو اس کا تھا وہ ابھی واپس آیا. یہ تو یقین کرے ڈبل زندگی ان کو انہوں نے دے دیا ہے.
یعنی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود, کیونکہ ان کی آنکھیں تو نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن ان کے ایک تو میرا خیال ہے کہ جب کسی کے ساتھ اتنی کوئی مہربانی برتتا ہے تو اس میں بہت ہی پازیٹیو اس کی زندگی رہتی ہے. تو انہوں نے پھر سیکھا, انہوں نے ان کی اسٹرگل اپنی جگہ بہت کمال کی بات ہے. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں.
جی ہاں جی بالکل, میں پوچھوں گا اس سے. سر السلام علیکم.
جی نمسکار, بولیے.
سر گزارش ہے کہ میری عمر ہے تقریباً 25-26 برس ہے. میں پیدائشی آنکھوں سے معذور ہوں, کچھ ہلکی پھلکی نظر تھی, لیکن اس کے بعد مجھے بڑا بخار ہو گیا, اس کے بعد پھر میری نظر مکمل طور ختم ہو گیا. اس کے بعد میری ایک سسٹر ہے جس کی 38 برس عمر ہے, 38 اس کی بھی بینائی مکمل ختم ہے. دوسرا میرا بھائی ہے, اس کی 22 سال عمر ہے, اس کی بھی نظر مکمل ختم ہے. کیا اس کے طریقہ کار کوئی ہماری یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے, یا اس کا کوئی طریقہ رہا؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر تھا رفیق جان باجی شہناز عزیز کے پروگرام میں آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو بینائی واپس آ سکتی ہے, لیکن میں نے ان سے ان کے بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز ہم ایک دیہات گاؤں میں موجود ہیں, اگر کوئی بھی ہیلپ ہو سکے تو برائے مہربانی ہماری مدد کریں. سب سے پہلے تو میں باجی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام پیش کرتی ہیں, اور ان کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جو بھی واسطے دار اہلکار ہوتے ہیں ان کو بلاتی ہیں, یہ اتنا اچھا.
چلیے تو محب صاحب ہم سنتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیں. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب بتائیں. یہ دادو سے بول رہے ہیں, دادو کے گاؤں سے, بولر شریف سے,
پاکستان سے.
دادو راجستھان؟
جی نہیں, یہ پاکستان میں دادو جو ہے سندھ میں,
پاکستان دادو میں. ہمیں کیا جہاں تک جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, پرائمری کنجنائٹل کائنڈ آف ڈیزیز جو ونشگت جو ہوتی ہے, جو جنریشن ٹو جنریشن ہوتی ہے, اور وہ بنا ایگزیکٹ ٹیکنیکل ڈائگنوسس کے کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا ان کو پرابلم ہے. لیکن وگیان نے, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے بہت سالوں میں. کیا آج کل تو نئی نئی گیجٹس آ گئے ہیں, تھراپیز آ گئی ہیں, اور سٹیم سیل تھراپیز آنے لگی ہیں. تو بنا سارے فیکٹس کے کمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا.
لیکن ڈاکٹر صاحب جو بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو تو اندازہ ہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جو لوگ مسائل جہاں نہیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, یہ بھی ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں, تو کیا اس کو روکنا ممکن ہوتا ہے؟ مطلب اسٹیم سیل وغیرہ تو بہت ہی ایڈوانسڈ اس پہ آ جاتا ہے, لیکن جیسے ان کا جینیٹک لگتا ہے کہ ان کے سب بھائی بہنوں کی تھوڑے دن بعد بینائی چلی گئی, تو اسے روکا جا سکتا ہے کیا؟
پریونشن ہے.
اچھا,
اویئرنیس اینڈ پریونشن. اویئرنیس سائنٹیفک بیسس پہ اویئرنیس کی جا سکتی ہے کہ کس آدمی کو اور ان کے کس پریوار والوں کو یہ چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے ونش میں ایسا ہوا ہے, نمبر ون.
اچھا,
نمبر ٹو, اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے. حالانکہ بہت کوئی ڈرامیٹک چینجز نہیں ہوئے ہیں ان 40-50 سالوں میں ایز فار ایز کنجنائٹل آئی ڈیزیز آر کنسرن, لیکن ایک بار ہو جائے تو کافی حد تک جو کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے اس میں کافی امپروومنٹ ہوا ہے.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک درخواست میں آپ سے کروں گی, میں آپ کو اب جانے دوں گی, اس کی وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کو, پتہ نہیں ہے آپ باہر کس انگیجمنٹ میں تھے اور واپس آئے گھر, اور آپ نے فوراً فون کیا, اور مجھے بہت خوشی ہے, یقین مانے میں آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن کیا آپ کے پاس کوئی تصویر آپ کی, اگر اپنے والد مطلب پورے فیملی کی تصویر ہو تو آپ ہماری فیس بک پہ پلیز اس کو ڈال دیجیے. آپ فیس بک پہ ضرور جاتے ہوں گے, کیونکہ ہم میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والے دیکھ سکیں ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو پوری.
جی ضرور بول دوں گا, کر دوں گا.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور چیتن شرما جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ تھے ڈاکٹر وجے پاوا صاحب جو کہ کلکتہ سے بات کر رہے تھے. اچھا اب شرما صاحب, آپ سے کئی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو لیتے ہیں. نجمہ نوشاہی ہیں فیصل آباد سے.
ہیلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام نجمہ,
کیا حال ہے شہناز؟
بالکل ٹھیک ٹھاک نجمہ.
شہناز میں نے حنان سے کہا ہوا ہے, وہ اپنی کہانی آپ کو لکھ کے انہوں نے بھیج بھی دی ہے انشاءاللہ, اور آپ کو بہت جلد مل جائے گی. اور تقریباً 20-22 سال ہو گئے ان کو انصاف نہیں ملا, ان کے والد کا مرڈر بھی ہوا, یہ سب انہوں نے کہانی میں لکھا ہوا ہے, تو پلیز ذرا اس کو دیکھ لیجیے.
میں ضرور دیکھوں گی, آپ ان سے کچھ پوچھیں ہمارے چیتن شرما صاحب سے.
سب سے پہلے تو یہ ان کی ہمت बहुत ज्यादा इनकी हिम्मत है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने कहानी लिखी और एक बहुत ही अच्छी हकीकत से हमें रोशनास करवाया कि पता चला कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। हमारे एक हाफिज अली मंजम है, उनकी भी वो वीओई के बहुत ज्यादा लिसनर हैं और उनकी पूरे खानदान में कजन मैरिज की वजह से उनकी बेनाई चली जा चुकी है। तो हो सकता है कुछ हमें उम्मीद पैदा हो इनकी वजह से कि ये जब आए अपनी कहानी लिखी तो इनकी वजह से उम्मीद हमारे दिल में भी हो और लोगों के दिल में भी हो कि वो भी बेनाई जो है उनकी वापस आ सकती है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ये कहूँगी कि इनका जो पूरा खानदान है और अच्छे लोगों के लिए इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारे पास के और डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब अगर फिर कभी आएं तो ये बता सकें कि कजन मैरिजेस की वजह से जो बनाई चली जाती है उसका क्या कोई इलाज है या आप साइंस ने इतनी तरक्की की है कि उनमें से थोड़ी बहुत रोशनी इनको मिल जाए।
मैं जरूर ये सवाल मैं जहन में रखूंगी, अक्सर आते रहते हैं। शर्मा जी,
जी
आप कुछ कहना चाहेंगे नजमा से?
हाँ, इनकी थैंक यू वेरी मच फॉर हर काइंड वर्ड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी है बस एक कोशिश करते रहता हूँ लगातार और वही सिलसिला जारी, अब देखते हैं कहाँ तक क्या आगे बात बनती है।
अच्छा, और हमारे साथ हैं सिंध से ही मोहम्मद आचर जी। मोहम्मद आचर साहब,
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप?
मेरा पहले तो मैं मुबारक दूंगा, आप मैंने जो कहानी सुना वो जो एक डॉक्टर तो नहीं था ऐसे समझो तो कोई फरिश्ता था, जो नाबीने वाले को नूर देना वो तो एक बड़ी बात है। आज
अच्छा एक बात सुनिए आचार्य साहब, अगर अपने पीछे आप ये फोन ये रेडियो बंद कर सकते हैं दो मिनट के लिए जब तक आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं साफ आ रही।
जी आवाज नहीं आ रही है सर।
जी अब ठीक है, अब बेहतर है थोड़ा सा, लेकिन अब आप सवाल पूछिए इनसे। शर्मा जी से क्या पूछना चाहते हैं?
हाँ यही सवाल है शर्मा जी से, तो ये जो डॉक्टर ने कहा था ये तो कम डॉक्टर होते हैं जो ऐसे कोई करते हैं, वो तो खुदा के फरिश्ते ही होते हैं जो ऐसे जिसके नाबीने को नूर देना ये बड़ी बात है। मैं पहले सबसे यही मुबारक दूंगा।
बिल्कुल।
दूसरा बात ये देखो आजकल के दौर में कोई ऐसे हमारे खुद कोई डॉक्टर ही नहीं चलता, ये तो खुदा की कोई फरिश्ता था। पहले सवाल मेरा डॉक्टर से ये था तो देखो नाबीना इंसान जो होता है वो तो किसी की बस की बात नहीं होती, वो बीमारी तो हो सकती, वो उसकी खुदा जब राजी होता है फिर तो डॉक्टर पे उसको भेज देता है फरिश्ते की सूरत में। मेरे को कहने का एक सवाल था डॉक्टर की बात पे, मेरे को कोई तकलीफ है दमे के बारे में, ये कोई ऐसे डॉक्टर से हमारी मुलाकात कराएं जो इसी के बारे में
दमे की बीमारी आपको। जरूर हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया आचार्य साहब आपका। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अयूब गुजरांवाला से। जी अयूब साहब चले गए। वाजिद बलोचा रहीम यार खान से। जी वाजिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
हेलो।
जी जी वाजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक।
पहले कहानी जब सुनाई थी ना अपनी तो आपने वादा किया था कि एक डॉक्टर साहब का नंबर देंगे।
लेकिन का
जो मैंने आपको बताया था ना मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, फिर बीमारी भी खत्म हो गई।
हमने वो नंबर नेशन किया डॉक्टर रफीक जान का, मैंने आपसे कहा था और ये नंबर हमने कई दफ़ा नशर किया है। और चलिए हम आपको बराह रास्त दे देंगे ये नंबर, आप शो के बाद फ़ोन करके ले लीजिएगा। शो के बाद आप ठीक है। अच्छा शौकत अली अंजुम हमारे साथ हैं डहरावाला से। शौकत साहब
अस्सलाम वालेकुम। मैडम
जी वालेकुम सलाम भाई।
शौकत अली अंजुम डहरावाला सर्च कर रहा हूँ
जी।
मैडम बात दरअसल ये है कि मुझे कुछ कहना है अपनी जुबान में, कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, तो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या वजह यह है कि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। प्रॉपर गाइडेंस मिले तो लोगों के लिए खिदमत कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब जो थे आप कलकत्ता से दोस्त, उन्होंने जनाब देखे लोगों के लिए, आप भी लोग उनको याद करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं मतलब रुपयों की बोरियां भर के ले जाते हैं लेकिन इंसानियत का कोई एहसास नहीं करते। काश के हमारे यहाँ पूरी दुनिया के डॉक्टर ऐसे हैं लोगों का एहसास करने वाले تو میرے خیال میں یہ دنیا جنت بن جائے گی. اور اب تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اس کہانی بھی اپنی بھیج رہا ہوں.
ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے, بہت شکریہ.
آپ سے ناراض رہتی ہیں میرے؟
نہیں نہیں, میں آپ سے ناراض نہیں, آپ سے تو میں بہت خوش رہتی ہوں. آپ کی آپ تو بہت باقاعدہ فون کرتے ہیں. اچھا چیتن شرما صاحب, یہ جو ہے شوکت علی انجم صاحب ہمارے, یہ بھی بینائی سے محروم ہے اور بڑے بہادر آدمی ہیں اور بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنی کہانی کے آخر میں ذکر کیا ایک ایسی خاتون کا, ویسے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خاتون کوئی اور ہیں, کملیش کوئی اور ہیں. تو میں سننے والوں کو بتا دوں, ان کو کملیش صاحبہ کو خاص طور سے بتا دوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کملیش جو ہیں انہی کا ذکر آپ کر رہے تھے. تو تھوڑا وہ بات کر سکتی ہیں ہم سے؟
ہاں جی ہاں جی ہاں
جی, بات کرائیے. میں اصل میں یہ جان, یہ ہم دوسرے فون پہ ان کو کر لیں کال.
نہیں نہیں کوئی بات نہیں, اسی پہ کر لیجیے.
ٹھیک ہے,
یہ لیجیے, بات کیجیے.
ہیلو
جی کملیش, آپ بہت شکریہ آنے کا پروگرام.
نمسکار میڈم.
نمسکار. تو یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ کے میاں, بڑے بہادر آدمی ہیں. اب آپ بتائیے, بیویاں کم ہی تعریف کرتی ہیں کسی کی, اسے سچ بولیں گے آپ.
میں تو میڈم اپنی لائف میں بہت خوش ہوں ان سے شادی کر, جس میں کہ میں نے ان سے لو میرج کیا ہے, شادی بھی نہیں کی ہے.
اچھا تو کیسے, پھر تو قصہ, پھر تو یہ کہانی آپ سنائیے, لو کیسے ہوا؟
نہیں ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ آدمی ہے, سب تعجب کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ میں نے شادی مطلب ایسے آدمی سے کی ہے, لو میرج ابھی
نہیں. آدمی تو بڑے کمال کے ہیں بھائی, بڑی ہمت والے آدمی ہیں. نہیں مگر کیسے, اب محبت کی کہانی سنائیے نا, اب آپ کی محبت کیسے ہوئی؟
ایسا کہ انہوں نے اپنی نا یہ وہ وگیاپن دیا تھا سیتا میگزین میں, تو اس کو میں نے پڑھ کے تو میں نے ان کو لیٹر پوسٹ کر دیا تھا کہ بتایا نہیں گھر میں کسی کو بھی, پاپا کے سائن بھی خود کر دیے اور وہ بایو ڈیٹا بنا کے خود ہی بھیج دیا. اب ان کو مطلب ٹھیک لگا تو انہوں نے واپس میرے کو بھیج دیا.
یعنی شادی کا رشتہ بھیج دیا آپ نے؟
انہوں نے بھی لیٹر واپس بھیج دیا میرے کو. جب میں نے گھر میں ذکر کیا کہ بھائی ان کو دکھتا نہیں ہے تو گھر والے سب رونے لگ گئے زور زور سے.
اچھا
کہنے لگے کہ ہم اندھے آدمی سے شادی نہیں کریں گے تیری, تو کوئی اور لڑکا بتا دے ہم وہاں کر دیں گے تیری شادی.
اچھا
اب میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو وہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, مجھے تو وہی لڑکا پسند ہے. اور میں جس میں کہ ہماری جاتیاں بھی دونوں کی الگ الگ ہیں, یہ راجستھان کے مارواڑی پریوار سے اور میں پنجاب کے پنجابی پریوار سے ہوں.
جٹی آپ جٹی اور وہ. اچھا تو یہ تو بتائیے کہ لڑکے کی کیا بات پسند آئی تھی؟
مجھے ان کی پسند آئی تھی, ایک تو یہ سندر بہت زیادہ مجھ سے.
اچھا واہ.
اور ان کی ایک تو یہ سرکاری نوکری تھی, اسٹینوگرافر تھے بینک میں, اور میں اتنی سندر نہیں ہوں اور میرے کو جو بھی دیکھنے کے لیے آتا تھا مجھے منع کر جاتا تھا.
آپ کی باتوں سے تو آپ اتنی سندر لگ رہی ہیں میرے دل میں, سامنے تو ایک بڑی,
اب پتہ نہیں جیسے کہتے ہیں نا زبان پہ لکشمی وہ سرسوتی بیٹھ جاتی ہے. میں نے کہا اس سے تو میں کسی اندھے سے شادی کر لوں وہ اچھا ہے. تو وہ پتہ نہیں جیسے منہ سے جو بات نکلی تھی شاید وہ سچ ہونی تھی اچانک سے, اور میں نے پھر ان سے شادی کر لی.
اچھا
ہاں, اب میرے دو بچے ہیں, ایک بیٹی ہے بڑی, ایک چھوٹا بیٹا ہے. بیٹی میری 15 سال کی ہے تو بیٹا 13 سال کا ہے.
تو آپ لوگوں کی بالکل, یعنی مجھے تو لگتا ہے ان سے تو بات کرتے ہوئے بھول ہی جاتا ہے آدمی. میں نے ظاہر ان کو خود تو نہیں دیکھا, لیکن پہلی بات تو ویسے سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, اب آپ نے اتنی سندرتا کی تعریفیں کی ہیں تو اب آپ پورے خاندان کا فوٹو فیس بک پہ لگا دیں تاکہ ہم لوگ وہاں سے لے کے اور اپنے پروگرام کے اوپر لگا سکیں. ٹھیک ہے, بلکہ شادی کی تصویر, بلکہ شادی کی تصویر لگائیں کملیش, تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کس پہ فدا ہوئی تھی آپ.
نہیں میں ضرور لگاؤں گی فیس بک پہ.
پکی بات,
بات کیجیے.
اچھا تو ابھی آپ سے,
ہاں جی
جی, ابھی پروگرام کے بعد ہم فون کر کے نا آپ سے فیس بک کا ایڈریس لے لیں گے آپ کا, تاکہ ہم وہاں سے وہ تصویر لے سکیں, اور یا آپ ہماری فیس بک پہ آ کے ہم اس پہ بھی لگا سکتے ہیں, یا آپ ای میل کر دیں نا مجھے جلدی سے اپنی تصویریں دو تین. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, دو فوٹوگراف میل کر دیتا ہوں, ایک پہلے بچپن کا بھی ہے جب میں I used to have eyes, اور آپ بھی کبھی ہے, تو دونوں کو مل.
اور وہ کہاں ہیں جب کملیش فدا ہوئی تھی آپ پہ؟
جی
جب کملیش کو آپ سے محبت ہوئی تھی وہ تصویر بھیجی آپ اس وقت, جس وقت آپ کی شادی, دونوں کی شادی جب ہوئی.
جی 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 جی, میں دیکھتا ہوں اس سمے کا جو بھی ملتا ہے.
چلیں ٹھیک ہے. اچھا تو چلیے, ہم کالرز ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. حبیب اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی حبیب صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
मैं सादकाबाद से फोन कर रहा हूँ मैडम साहबा, मैं मुझे आपने फोन किया था कि तकरीबन दो हफ्ते पहले
जी,
मैंने मेरी कहानी के सिलसिले में,
अच्छा,
तो आपने कहा था कि दो तीन दिनों में मैं रिकॉर्ड करूंगी अपनी कहानी, लेकिन मैं इंतजार करता रहा, अभी तक आपने रिकॉर्ड
नहीं किया। असल में हबीब साहब होता ही है कि आप लोगों के फिर फोन हम ट्राई करते रहते हैं, जब मिल जाता है, इसीलिए हम सुनने वालों से कहते हैं कि जब फोन मिल जाए उस वक्त अगर आप लोग रिकॉर्ड करा दें, लेकिन पाकिस्तान में मुझे मालूम है कि बिजली की और बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, तो चलिए हम इसके बाद आप ऐसा कीजिएगा, फ़ोन बंद नहीं कीजिएगा, साकिब आपका नंबर ले लेते हैं और आपको रिकॉर्ड आप चाहेंगे तो आज ही कर लेंगे।
अच्छा, दूसरा बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं चेतन शर्मा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरह का आदमी हूँ जिस तरह चेतन शर्मा साहब हैं।
अच्छा,
शुक्रिया जी, बहुत
जी जी, आज तो लगता ये है कि प्रोग्राम ही हम लोगों का है आज
तो, बिल्कुल है ही आपका प्रोग्राम, और इसमें बात तो यही होती है ना कि जब एक आदमी की हम हिम्मत की कहानी सुनते हैं तो हमें ये पता लगता है कि किसी भी माजूरी से मजबूर नहीं होता आदमी। आप देखिए शर्मा जी ने कितना जिंदगी में, इन्होंने बताया दो कॉम्पिटिशन के इम्तिहान इन्होंने पास किए और लोगों को इन्होंने मतलब इन्होंने कामयाबी हासिल की। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि ये आप जिस इलाके में रहते थे उस, आपने एक तो शुरू में आपने लिखा कि ताऊजी ने सारा कुछ किया, तो आपके वालिदैन कहाँ पर थे, माँ बाप?
वो मसला यूँ है कि मेरे वालिद साहब उस समय बैंक में थे, अच्छा, और सरकारी मुलाजिम होने के कारण छुट्टियों का थोड़ा मसला रहता था, तो मुझे ट्रीटमेंट के सिलसिले में 15 दिन कभी 20 दिन कभी लगातार बाहर लेके जाना पड़ता था, तो वो ज्यादातर जो फील्ड वर्क है वो ट्रीटमेंट में वो उन्होंने ताऊजी ने ही सारा काम किया।
अच्छा, लेकिन क्या इंडिया में जयपुर में या जहाँ भी आप सीतापुर में जहाँ भी रहते थे वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद थी इस तरह की कि किसी मतलब नाबीना शख्स को सिखाई जा सके सारी टाइपिंग वगैरह इस तरह की चीजें?
हाँ, स्कूल्स स्पेशल स्कूल्स वो अवेलेबल थे, लेकिन कुछ चीजें जो कंप्यूटर्स वगैरह है इन चीजों का ट्रेनिंग का उस समय नहीं था, और वो जैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ तो अब स्कूलों में वो चीज हो गई, बाकी उस समय भी जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम था जो वो था इन प्लेस था बड़े बड़े शहरों में, तो राजस्थान के।
अच्छा,
उस तरह की सुविधाएं थी।
अच्छा, अब है मोहम्मद यूसुफ डीजे खान से। जी यूसुफ साहब,
सलाम
जी। वालेकुम सलाम भाई,
बाजी क्या हाल है?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जो वक्त गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा तो बताइए,
बात तो पुरानी हो गई, बात पुरानी हो गई, ईद मुबारक देता हूँ आपको सब मीडिया वालों को।
ईद तो कभी भी पुरानी नहीं होती, हमारी तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक, बल्कि अच्छा आपने याद कराया है, मैं अपने तमाम सुनने वालों को, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने
तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को मुसलमानों को सबको मैं ईद मुबारक भेजता हूँ।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम के बारे में?
हाँ, प्रोग्राम तो बाजी अच्छा है, ईमान की बात पूछे तो 3 साल हो गए मैं रेडियो अमरीका पे लगाया, उसको जंग पड़ गया, दूसरे साइड में सुई भी नहीं जाती उसकी।
अच्छा, तो रेडियो अमेरिका लगा हुआ है ना?
बिल्ला पे सुनते हैं, मेरा बेटा, 2 बेटे हैं मेरे, मैं हूँ, 3 आदमी हम बैठ के बकायदगी से साथ सुनते हैं।
बस ये कभी कभी जंग साफ साफ करते रहे, ऐसा ना लगे कि सुई जंग लग के झड़ जाए और फिर आप प्रोग्राम ही ना सुन सके।
नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा।
क्या बात,
जो आप कहानी सुना रहे थे ना, अल्लाह की कसम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी कहानी थी, बहुत दर्दनाक कहानी थी।
दर्दनाक नहीं, मगर मैं ये कहती हूँ कि बड़ा प्यारा अंजाम था, एक आदमी की बहादुरी और हिम्मत की कहानी थी, और आप देखिए उनकी शादी भी कितनी अच्छी हुई, खुशपाश हैं अपने घर में। तो चलिए बहुत शुक्रिया, और खुर्शीद रब्बानी है, खुर्शीद रब्बानी साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं?
जी मैं आजाद किशन मुजफ्फरबाद से।
जी भाई,
ये डॉक्टर साहब से मैं पूछा था कि मेरी ये लाइट की प्रॉब्लम होती है, कभी कोई लाइट लग जाए तो बिल्कुल यानी लाइट चली जाती है, और ऐनक अगर डालूं तो आप यानी 1-2 महीने के बाद उसका नया नंबर डालना पड़ता है।
अच्छा, मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि जब भी मैं आँखों से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम करती हूँ तो लोग बहुत से सवाल पूछते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन खुर्शीद साहब हम जल्दी एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें आँखों के किसी माहिर को, बल्कि मेरे एक और प्रोग्राम होता है कुछ तो कहिए हर हफ्ते को होता है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आँखों
पहले तो चलो बीबीसी या इस तरह का, लेकिन अभी आजकल ये आपके प्रोग्राम ज्यादा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है हम लोग यही सुनते रहते हैं, बड़ी काम की चीजें होती हैं आपके।
बहुत शुक्रिया आपका, और बस सुनते रहिए प्रोग्राम। हम लेते हैं मोहम्मद तलहा को। जी तलहा साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, मैं मोहम्मद तलहा बात कर रहा हूँ हंगू से।
हंगू जी। जी
जी मैडम, मैं शर्मा जी को बहुत बधाई बात देता हूँ। तो मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये जो कंप्यूटर में जॉस सॉफ्टवेयर है, तो ये इंडिया में क्या हिंदी में आ चुका है या उर्दू में आ चुका है? और दूसरी बात आपसे ये कि ये डॉक्टर शफीक रफीक जान का नंबर अगर मिल सकता है तो मुझे भी चाहिए।
ठीक है, हम आपको इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे डॉक्टर रफीक जान से पूछ के हम फेसबुक पे नंबर डाल देंगे, ठीक है, अगर वो हमें इजाजत देते हैं।
सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये नेट भी नहीं है एक तो, और मेरे पास कंप्यूटर भी
अच्छा
नहीं।
तो आप ऐसा कीजिए, सुनिए तलहा, आप फोन बंद नहीं कीजिएगा, आपसे साकिब अभी फोन पे ये नंबर ले रहा है, फोन पे रहिए, ठीक है। और मैं शर्मा जी आपसे पूछूंगी, तलहा ने जो सवाल आपसे पूछा कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसे नाबीना अफराद इस्तेमाल कर सकते हो?
नहीं, मैं इस थोड़ा सा आपका दो मिनट लूंगा इसका जवाब।
जरूर जरूर लीजिए आप।
जी जी, मसला ये है कि जब जो इंग्लिश का कंप्यूटर में इंग्लिश अगर लिखनी और पढ़नी है तब तक तो कोई इशू नहीं है, कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों में ही टॉकिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल में एसएमएस वगैरह पढ़ लेते हैं और कॉन्टेक्स्ट वगैरह सेव कर लेते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंग्लिश में काम करने में, वहां तक तो कोई मसला नहीं है।
अच्छा
जी, मसला आता है अब ये जो अपनी हिंदी और उर्दू इन लैंग्वेजेस में,
ठीक है,
तो हिंदी का तो मुझे पक्का मालूम है कि हिंदी का स्क्रीन रीडर अवेलेबल है।
अच्छा,
उर्दू का अगर आप इन भाई साहब को मेरा ईमेल आईडी दे दें तो मैं पता करके रख सकता हूँ और इनको मैं वो चीज बता सकता
हूँ। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तलहा से हम नंबर ले रहे हैं, साकिब ने ले लिया नंबर, तो मैं बल्कि तलहा को फोन करके बता दूँ, साकिब बताएंगे, साकिब आपके जिम्मे ये काम है, ठीक है। अच्छा, मैं शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तस्वीर का इंतजार रहेगा, तो बड़ी मेहरबानी आप आए और आपसे इतनी अच्छी बातें, बहुत बहुत
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपको एक बात बता दूं, आपकी बीवी मुझे बहुत प्यारी लगी, कमलेश बहुत ही प्यारी खातून है भाई, आप बहुत खुश नसीब हैं, इतनी अच्छी खातून से शादी हुई आपकी।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही।
चलिए ठीक है, बच्चों को भी हमारी दुआ प्यार, और चलिए हम चलते हैं आगे। फरमान जाफरी, अब मैं कुछ फेसबुक के मैसेजेस पढ़ दूं। बकर पंजाब से फरमान जाफरी ने लिखा है कि वो खामोश सामे हैं क्योंकि उनके पास लैंडलाइन नहीं है। भैया क्या कर सकते हैं आप, ऐसा कीजिए, चलिए हमें अपना भेज दीजिए नंबर सेल फोन का, कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। मलंग एजाज ने हमारे फेसबुक के पेज को बहुत पसंद किया है, सोराब अली ने भी पसंद किया है, और समीर खान ने दोहा कतर से ख़त लिखा है, हमने इनको भी कॉल की थी इनकी कहानी रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छी सी कहानी थी। समीर, वही मामला होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस वक्त आपकी मसरूफियत होती है, फिर हमारे दूसरे स्केड्यूल अड़े आ जाता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, बहुत जल्द हम आपको फ़ोन करके आपकी कहानी आपसे लेंगे। अनवर आसिफ ने बड़े बड़े बहुत से सवाल पूछे हैं, मुबारकबादें भेजी हैं, बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। राना एम इमरान खान को ख़ास तौर पे ईद मुबारक क्योंकि उन्होंने ख़बर दी है कि उनके बेटा हुआ है, और हुआ भी बिल्कुल ईद के ज़माने में, तो भैया इमरान आपको और आपकी बेगम दोनों को हमारी मुबारकबाद। अच्छा, जावेद इकबाल साहब ने लिखा है, कुछ हमारे मशागिल के बारे में जानने की कोशिश की थी, जवाब दे दिया, तो चलिए आपका भी ख़त लिखने का शुक्रिया। और इसी तरह और भी बहुत से ख़त हैं, इब्ने कश्मीरी साहब जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने पसंद किया है हमारे लिंक को, और राहत फ़तेह अली ख़ान को सुनना चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे जल्द उनको ला सकें। अब हम अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं, और हमारी अगली कहानी, इससे पहले एक छोटा सा प्रोमो।
हम जो है ना 9 बहन भाई हैं, 6 बहन भाई आंखों से मुताज है। कहानी मांगते नहीं है। हम शहर में जाए तो वो कोई कहता है कुछ 2 रुपए ले जा, 5 रुपए ले जा, मैं नहीं लेता। मुझे कोई साइकिल भी कोई नहीं, खाने के लिए सालन नहीं होता, बड़े बड़े मुश्किल से बनाते हैं। हमारा जब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अच्छा जनाब, ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका से आप सुन रहे हैं और अब एक कहानी है। हम बहुत शिकायत करेंगे कि दोनों कहानियां जो अब हैं उनमें हमें टेलीफोन नंबर नहीं भेजा। बहरहाल ये मुख्तसर कहानियां हैं और दोनों में एक अच्छा मैसेज भी है। फ़ज़ल इलाही शाकिर साहब एम ए, इन्होंने चेक नंबर 749 गाफ बे तहसील और ज़िला टोबर टेक सिंह से कहानी भेजी है। तो लीजिए कहानी साकिब उल इस्लाम से सुनते हैं।
कहानीकार फ़ज़ल इलाही शाकिर फ्रॉम टोबा टेक सिंह। मेरी कहानी कुछ इस तरह है कि मेरा बाप एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था मगर बदकिस्मती से नशे का शिकार हो गया। मेरे दादा ने बहुत समझाया मगर वो नशे की ऐसी दलदल में फंस चुका था जहाँ से उसका वापस लौटना नामुमकिन था। मेरे दादा ने उसे ताहयात तमाम जायदाद से महरूम करके घर से निकाल दिया। मेरी 4 बहनें थीं, मेरा बाप हम सब को साथ लेकर एक दूसरे गांव में चला गया जहां हमारी कुछ जायदाद थी। मेरे बाप ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करना चाहा तो मेरे दादा ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया और उसे कैद करवा दिया। अब हमारा कोई पुरसाने हाल न था। मेरी माँ जो कि एक साबिर और पाकबाज औरत थी हमें साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चली आई। मेरी माँ एक मेहनती औरत थी, उसने अपने माँ बाप और भाइयों का सहारा लेना गवारा न किया और भाइयों के साथ मिलकर मजदूरी करके अपना और हमारा पेट पालने लगी। मुझे करीबी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैंने 5वीं क्लास पास की और फिर 2.5 किलोमीटर पर वाके हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। मैं रोज़ाना 2.5 किलोमीटर पैदल सफ़र करके स्कूल जाता और आते ही अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाता। इस तरह मेरा तालीमी सफ़र जारी रहा और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों से पास कर लिया। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज में आला तालीम हासिल करूं, मगर क्या करता, माँ के कमज़ोर हाथ मेहनत मजदूरी करते करते शल हो चुके थे। लिहाजा मैंने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया और इस तरह 1 साल गुजर गया और पैसे भी ख़त्म हो गए। 2 बहनों की शादी एक गरीब ख़ानदान में कर दी। इसी असना में असातसा की ट्रेनिंग का इश्तहार निकला। मैंने दाखिले की दरख्वास्त दे दी। मेरिट की बुनियाद पर ना सिर्फ मुझे दाखिला मिल गया बल्कि वजीफ़ा भी लग गया। इस तरह मैंने ट्रेनिंग का अरसा आसानी से मुकम्मल कर लिया। चूँकि वह दौर अभी कम पढ़े लिखे लोगों का दौर था लिहाजा जल्द ही नौकरी मिल गई। मुलाजमत के साथ साथ मैंने फारिग टाइम में प्राइवेट इदारा खोल लिया। इस तरह मेरी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैंने अपना घर भी बना लिया और बाकी मानदा बहनों की शादी भी कर दी। अब कुछ सुख का सांस आया तो मैंने प्राइवेट तौर पर तालीम हासिल करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने MA कर लिया और मुझे 16 स्केल में नौकरी मिल गई। मैंने एक यतीम लड़की से शादी की जिससे मेरे यहाँ 4 लड़कियाँ और 1 लड़का पैदा हुआ। मैंने कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और उन सब की शादी भी कर दी। मेरा सबसे छोटा बेटा अब भी मेरे साथ है और अनकरीब उसकी भी शादी कर दूंगा। मुलाजमत से ग्रेड 18 में रिटायर हुआ और अब 20,000 के करीब पेंशन ले रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है अच्छे दिन गुजर रहे हैं। मेरे मशागिल में शायरी का शौक़ भी था। मुख्तलिफ रिसालों में गज़लें लिखीं और शायरी को मशगला रखा, पेशा नहीं बनाया। जाते जाते 1-2 अशार मेरी तरफ से। मुझको गमे हयात ने जीना सिखा दिया, खूने जिगर को शौक से पीना बता दिया। वो और होंगे जिनको मुकद्दर से है गिला, हमने तो हर एक दाग तमन्ना मिटा दिया। फजल इलाही शाकिर तहसील और जिला टोबा टेक सिंह।
तो एक शेर और उन्होंने लिखा था, साकिब ने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, वो अच्छा शेर है। देगी तुम्हारा साथ उम्मीद पैहम जरूर, कोहे ग्रां के सामने डट जाना चाहिए। बहुत खूब, मुझे बड़ी खुशी हुई फजल इलाही शाकिर साहब। ये वो कहानी है जिसके आखिर में कहा जाता है और उसके बाद वो सब सारी हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। हमारे कुछ कॉलर्स आते हैं, उसके बाद हमें 19 कहानी है मास्टर गुलाम हुसैन की, श्रीनगर से उन्होंने भेजी है, वो सुनेंगे। अब्दुल वही साहब हैं खुजदार से। जी अब्दुल वही साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वही ज़ेरी खुजदार बलूचिस्तान से बोल रहा हूँ।
जी भाई क्या हाल है?
डॉक्टर शर्मा साहब हैं, उनसे बात कर रहे हैं।
अब तो चले भी गए।
तो डॉक्टर शर्मा साहब से मुझे कुछ सवाल करना था।
शर्मा साहब डॉक्टर नहीं थे, शर्मा साहब वो मरीज थे और जो डॉक्टर साहब थे वो
शानाज मुझे, हमने आपसे भी शिकायत भी है।
सुनाइए शिकायत जल्दी से।
تو کچھ تو کہیے, میں ہمارے زبان میں کوئی نئی آواز کی ہوں.
نہیں نہیں یہ بات نہ کہیے, ابھی حال ہی میں دو تین لوگ آئے ہیں, آپ کو اگر پروگرام سنا ہو, زینت بلوچ آئی تھیں, ان سے پہلے سبیہ بلوچ آئی تھیں.
نے تو کہا تھا نا اپنے زبان بروئی زبان میں کہا تھا, کچھ تو کہیے تو اپنی زبان میں کہا.
اچھا اچھا وہ اچھا نام نہیں آیا, او ہو سوری سوری سوری. چلیے بولیے کچھ تو کہیے نا.
گراس تو پارنی نا.
نہیں دوبارہ سے کہیے.
گراس تو پارنی نا.
تین طرح کہہ کے دکھائیے, ہنس کے, رو کے اور سنجیدہ ہو کے.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گراس پابو نم نا.
چلیے ایک دم ہنس کے کہہ کے دکھائیے.
جی
ہنس کے خوشی خوشی کہہ کے دکھائیے.
گراس پابو نم نا.
یہ دیکھیے کتنے دفعہ براہوی میں آ گیا, بس اب تو آپ خوش ہو گئے. اچھا اب حاجی مرزائی ہیں ٹانگ سے. جی حاجی مرزائی صاحب السلام علیکم. حاجی مرزائی.
جی سر السلام
جی کیسے ہیں حاجی مرزائی صاحب؟
بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسی عید گزری آپ لوگوں کی؟
بہت اچھا الحمد للہ, اللہ کی فضل ہے, بہت اچھا گزری.
چلیے بھائی شکریہ.
میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی جو کہانی پروگرام ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے, اور اس میں آپ نے بہت عمدہ کردار ادا کیا ہے. غریب لوگوں کو اور معذور لوگوں کو ایک آواز دوسروں تک یا اعلیٰ افسروں تک پہنچانے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے. اگر ہمارے کوئی اچھے منصب پہ ہوتے تو آپ ایک ایوارڈ کے قابل ہیں اس بارے میں.
آپ لوگوں کے جو الفاظ ہیں نا, اس سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں ہے حاجی مرزائی صاحب. ہمارے سننے والے ان کی تعریف جو ہے نا, اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی پروگرام سن کے کوئی اچھا پیغام ملتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ یقین جانے میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ وہ ہے. بہت شکریہ اتنی محبت سے آپ نے کہا. آپ بھی کوئی کہانی بھیجیے ہمیں. اچھا ان کا کہانی. اچھا رزاق فاخر ہے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے. جی رزاق فاخر صاحب. رزاق فاخر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
نازبا جی ٹھیک ہیں؟ کیا حال ہے؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے, پہلی دفعہ آئے ہیں پروگرام میں؟
جی جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ شمالی بھی آپ کے لوگوں کو لسنرز کو زیادہ مس کرتے ہیں.
زیادہ مس کر نہیں نہیں نہیں, ہم تو جس کا فون مل جائے اٹھاتے ہیں. آپ لوگ ہمت ہی نہیں کرتے, وہ تو بےچارے تین تین دن ملاتے رہتے ہیں فون, اسی لیے ان کے فون مل جائے.
کچھ مخصوص ہمیں ہیں وہ, یعنی بار بار وہ آتے ہیں تو اس طرح.
میں نے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا تھا ارتزاق صاحب, میں نے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ باجی پانچواں گھنٹہ ہے, پانچویں گھنٹے پہ فون ملا ہے. تو آپ بھی اتنی دل جمعی سے فون ملائیے تو آپ کو ضرور ملے گا. جی کہیے.
میں بھی کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے شہناز عزیز اور شہناز نفیس کی.
اچھا تو آپ کو آواز میں کوئی فرق نظر آتا ہے ہماری؟
آوازوں اور لہجے میں بھی ہوتا ہے, لیکن کسی دن آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں سمعین کو تو نوازش ہوگی.
دیکھیے شہناز عزیز وہ ہیں جو آپ کے لیے میری کہانی, کچھ تو کہیے نا, اور اسی طرح اکثر آپ رپورٹس وغیرہ سنتے ہیں, اس سے پہلے ان دا نیوز میں بھی سنتے تھے. شہناز نفیس دیگر پروگرام کرتی ہیں, آپ سنتے ہوں گے. اچھا تو بہت شکریہ, اور پروگرام سنتے رہیں گے تو آپ کو پتہ لگے.
ہاں میں سنتا رہتا ہوں, اور کہانیوں میں تھوڑی سی آپ کی یکسانیت پائی جا رہی ہے کیونکہ اس میں زیادہ وہ مسائل آ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کہانیاں شامل کیا کرے. گھنٹے کے پروگرام میں ہارڈلی ایک دو کہانی شامل ہو پاتی ہے, یہ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے.
ابھی ہم جلدی سے ایک کہانی اور سنواتے ہیں آپ کو. چلیے آپ سنیے, یہ سری نگر سے کہانی بھیجیے, اور ہمارے بھیجنے والے ہیں ماسٹر غلام حسین صاحب. انہوں نے بھی اپنا فون نمبر نہیں لکھا تو آج ثاقب الاسلام کہانی کار بن گئے. تو لیجیے ثاقب سے سنتے ہیں.
کہانی کار ماسٹر غلام حسین, سری نگر انڈین کشمیر. آج سے کوئی 30 برس پہلے کی بات ہے. شہر سری نگر کے ایک اندرونی راستے پر چلا جا رہا تھا. تیز بارش کی وجہ سے ایک ندی میں پانی زور و شور سے بہ رہا تھا. اچانک میری نظر ندی کی طرف گئی. ایک عورت شاید بند سے پھسل کر ندی میں جا گری تھی. ندی کا بند مٹی کا بنا ہوا تھا, اور بند پر بارش کی وجہ سے بہت پھسلن بھی تھی. میں آہستہ آہستہ بند سے پھسل پھسل کر اترتا گیا تاکہ عورت کو بچا سکوں. بند کے نیچے پہنچا تو عورت ابھی کنارے پر تھی, لیکن اس کا اوپر آنا ناممکن تھا. میں نے اس عورت کے کپڑے کو پکڑے رکھا تاکہ اور کوئی آدمی آ کر میری مدد کرے اور ہم عورت کو بچا سکے. اسی اثنا میں بھی دریا کی طرف پھسلنے لگا. بند پر کچھ گھاس تھی, میں نے اس گھاس کو ایک ہاتھ سے پکڑے رکھا. گھاس کے اکھڑنے کا خطرہ بھی تھا, لیکن میں نے عورت کا کپڑا تھامے رکھا. گھاس اکھڑنے لگی اور میں بھی بہتی ندی میں گرنے کے قریب تھا کہ ایک آدمی نے نامعلوم کیسے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ رسی لے کر آیا، سڑک پر رسی کا ایک حصہ پکڑ لیا اور ایک کونا میری طرف پھینکا۔ عورت کو کہا میرا کپڑا پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑ کر اوپر لوگوں نے رسی کو زور سے کھینچا اور ہم دونوں کسی طرح پھسلتے پھسلتے سڑک پر آ گئے۔ خدا کی مدد نہ ہوتی تو ہم دونوں اس تیز ندی کے بہاؤ میں ڈوب جاتے۔ گھاس کا پودا کیسے اکھڑا نہیں، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگرچہ بعد میں بہت سے لوگ سڑک پر جمع ہو گئے، لیکن گھاس کا وہ پودا میرا پہلا سہارا بنا۔ بند کی گیلی مٹی، زمین کی اترائی اور پھسلن، اور ایک ہاتھ سے عورت کو تھامے رکھنا اور دوسرے ہاتھ میں ایک معمولی پودے کا سہارا، بس خدا کی مدد تھی۔ یہ منظر آج بھی میری نظروں میں سمایا ہوا ہے۔
میری ہے
ہم جو ہے نا نو بہن بھائی ہیں، چھ بہن بھائی آنکھوں سے محتاج ہیں۔
میری ہے کہانی،
مانگتے نہیں ہیں۔ ہم شہر میں جائیں تو وہ کوئی کہتا ہے کوئی دو روپے لے جا، پانچ روپے لے جا، میں نہیں لیتا۔ مجھے کوئی سائیکل بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا، بڑے بڑے مشکل سے بناتے ہیں۔ ہمارا جو بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔
میری ہے کہانی،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
آواز دوست، انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
تو کچھ دو تین کالرز کو جلدی سے لے لیتے ہیں۔ مرید خان صاحب، آپ صبر سے بیٹھیے گا کیونکہ آپ کا فون اکثر شامل ہوتا ہے۔ پہلے دو اور لے لیں۔ دین محمد صاحب ہیں خوزدار سے۔ جی دین محمد صاحب، قصور سے معاف کریں۔ جی
میڈم، میں ایک اپنا ذاتی ایک معاملہ ہوا تھا تو میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی جو
نہیں سنی، بات یہ ہے کہ ذاتی معاملہ جو ہے نا، ہم اس طرح چاہتے ہیں،
ایسا نہیں مطلب، لیکن اس میں جو ہے ایک میسج ماں اور بیٹے کا ہے، یہ ایسی بات۔
ہاں لیکن آپ کہانی ابھی لکھ کے بھیجیے نا، شرط یہ ہے نا کہ کہانی آپ لکھ کے بھیجیں اور ہم پھر سنائیں، پلیز۔ تو آپ کا، آپ ابھی فون بند نہیں کیجیے، ہم آپ کا فون نمبر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
میں
ہاں نہیں، ثاقب آپ سے لیں گے، ایک سیکنڈ آپ لائن پہ رہیے۔ اور عبدالعزیز تلہ گنگ سے۔ جی عبدالعزیز صاحب،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
شہناز صاحب،
جی جی،
ہیلو ہیلو،
جی 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 عبدالعزیز صاحب،
آواز آ رہی ہے؟
بہت بہترین۔
بڑے عرصے سے میں فون کر کر کے آج جڑا نا، بڑے عرصے تو بعد کال ملی، بڑا اچھا پروگرام ہے اور بہت بہت جڑا نا مت لے کے،
تو شکریہ بہت بہت۔
پروگرام اچھا بنا، بڑا اچھا پروگرام چل رہا اور بہت بہترین پروگرام ہے۔ تو جڑا ڈاکٹر ہے، میں بھی نبینا۔
اچھا، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو جانے کیوں دیا۔ عبدالعزیز صاحب،
دیکھیے
ان کا پروگرام میں نے پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں غالباً وہ آئیں گے، لیکن کنفرمڈ کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جیسی تاریخ کنفرم ہوگی نا، میں آپ کو ضرور، ہم آپ کو ریڈیو پہ بتائیں گے، آپ ریڈیو سنتے رہیے۔ اور آپ پلیز اپنا ٹیلی فون نمبر ثاقب کو دے دیجیے گا، فون بند نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہے ہمارے مرید خان۔ جی میاں والی سے۔ جی مرید خان صاحب، آپ کو بھی مبارک۔ کیسی عید گزری بھائی آپ کی؟
آپ اندازہ لگا لیں کہ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں وہاں بجلی نہیں ہے، اور گہرے میں ٹیلی فون کر رہا ہوں، آپ لوگوں پسینے سے شرابور ہوں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب شروع شروع میں فون کر رہا تھا تو میرا ایک بیٹا جو ہے وہ گھونگا ہے۔
جی جی جی،
وہ کہتا تھا اپنی ماں کو کہ بھائی ابو جو ہے نا اندر جا کر کچھ عورتوں کو فون کرتا ہے۔ تو ماں نے اس کو بتایا بھائی وہ میں عورتوں کو فون نہیں کرتا ہوں، میں فون کرتا ہوں۔ تو پھر وہ ہنس پڑا۔
آپ انہیں بتائیے کہ میری کچھ بہنیں ہیں وائس آف امریکہ میں۔ بہت شکریہ، بس ٹھیک ہے، بچہ ہے نا وہ، لیکن ٹھیک
ہے، ابھی تو پورے گاؤں کو پتا ہے کہ میں فون کرتا ہوں، مجھے یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے کہتے ہیں ویسے امریکہ جا رہا ہے۔
چلیے بس، بہترین، آپ مشہور ہو گئے ہیں مرید خان، وائس آف امریکہ والے۔ اور آمین۔ تو چلیے سامین، اب ہمیں اب اجازت دیجیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ہمارے پروڈیوسر ثاقب الاسلام ہیں، ہماری انجینئر چیا وانگ ہے، شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی اس درخواست کے ساتھ کہ کہانیوں کے معاملے میں بے صبر بالکل نہ ہو، کیونکہ دیکھیے بہت سی کہانیاں ہیں، باری آنے پر ہر اچھی کہانی نشر ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہر کہانی نشر نہیں ہو سکتی. تو شہناز عزیز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.